الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين عبد القاسم محمد
और बदकिस्मती होती है कि जब हम वो ये फैसले कर रहे होते हैं
ama ne kadar yıl kadar bizlerin terk etme. Mamur ne sattı? Mesela ben bir kelimik uzurkan, bir kelimik kelimik da. O zaman ne sattı ki hem fesada zindelik görmek ya. Bu ilk milli bir arttı. İlk milli bir arttı, onun için şu arasında ne sattı ki hem zindelik ve fesada ki. Ama bu ilk milli bir arttı da ne? Yani ne kadar? Ama ne çoğu zindelik bir arttı da ne?
क्या मैं समझ सकता था उस वक्त कि इस फैसले के असर कितने हैं? क्या मुझे पता था कि जाने की सूरत में मैं क्या बनने वाला हूँ और ना जाने की सूरत में मैं क्या बनने वाला हूँ?
नहीं।
क्या मामूलन इंटरमीडिएट के बाद बच्चे जब कैरियर का इंतखाब करते हैं तो उनको पता होता है कि वो क्या बनने वाले हैं? रफ तो कुछ चीजें पता होती हैं, मसलन अगर आपने बी का इंतखाब किया और इंजीनियर बनेंगे उस अगर आपने किसी कॉमर्स की फील्ड में इंतखाब किया तो आप उससे रिलेटेड कुछ बन जाएंगे, लेकिन मामूल आपको नहीं पता होगा इंसान है कि आगे क्या बनने वाले। आप कुछ फैसले गलत हो जाते हैं और उन फैसलों के नतीजे में आपकी जिंदगी तब्दील होती रहती है और ये इंतहाई अहम फैसले मामूल भी अगर आपकी गफलत में अंजाम पा रहे हैं हमको तो समझ का आता नहीं है। एक ये पॉइंट है। दूसरा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम कर गुजरते हैं और उन फैसलों में हमारी कोई दखालत नहीं होगी जबकि फैसले हम ये नहीं किए होते। ये जो मैंने आपकी खिदमत में अभी मिसाल दी, इसमें फैसला मैंने किया था कि मैं इंटरमीडिएट के बाद ईरान जाऊं या ना जाऊं, ये तो बहुत सादा फैसला है कुछ के मुकाबले। मिसाल के तौर पर बिल्कुल आम फैन की मिसाल दे रहा हूँ, आप इधर जॉब कर रहे थे, आपका सारा काम सही चल रहा था, आपका बॉस से झगड़ा हुआ, आपका शॉप नर्ट हुआ, आपने चार बातें उसको कहीं, उसने चार बातें आपको कहीं, आपने रिजाइन दिया, मामला खत्म हो गया और आपकी लाइफ ने एक टर्न पकड़ लिया है। ये जो फैसला हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है, ये आपने खून के जोश मारने पर कर डाला है, हमने चाहे मर्जी से नहीं किया लेकिन हो गया है। ये एक और किस्म के फैसले होते हैं जिसमें आपकी कोई दखालत नहीं होती। एक और तीसरे किस्म के फैसले होते हैं जिसमें आपकी मुतलकन कोई दखालत नहीं होती। वो कैसे फैसले होते हैं? अच्छा, एक्चुअली फैसले नहीं होते, वो सिर्फ आपके ऊपर डिक्टेशन होती है। मसलन मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं लाइफ के एक खास हिस्से के अंदर हूँ, जैसे कि कल दो सवाल कुछ चीजें सुना रहे थे, साहब मैं अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए किसी जगह जा रहा था, अचानक गाड़ी का कोई हादसा हुआ है और मैं पैरालाइज हो गया। अब ये जो हादसा जो शायद मेरी लाइफ को टर्न कर दी है, ये अपसाइड डाउन हो गई है, इस साइड से उस साइड चली गई है, इसमें मेरी कोई दखालत नहीं। बस तीन किस्म के फैसले हमारी जिंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट्स आ रहे होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पीछे हमारी कुछ डेलिब्रेशन होती है लेकिन डिटेल से हमें पता नहीं होती। एक वो होते हैं जो रश और ब्लड में होते हैं, जज्बात में होते हैं, इमोशंस के अंदर होते हैं, उसमें भी हमारी ज्यादा दखालत नहीं होती। और एक वो होते हैं जिसमें हमारी कोई दखालत नहीं होती, वो हकीकत का हादसा होता है। अच्छा, इन तीनों के पीछे कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा इन्वॉल्व है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मसलन अगर वो हादसा है, ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसमें तो यही कोई दखालत है ही नहीं है, वहीं कहीं और से कुछ हुआ है, वो जो कहीं और है, अगर कोई खुदा को ना माने तो वो मैटर कहेगा, नेचर कहेगा, लाइफ कहेगा, हम उसको खुदा कहते हैं, वो कौन खुदा। अच्छा, वो जहां पर मैंने इमोशंस के अंदर आकर काम किया है वहां भी फैसला उसी हुक्म मुताबिक तय हुआ है। जहां पर मैंने खूब डेलिब्रेशन की और फिर फैसला किया वहां पर भी वही हुक्म खुदा है जो नाफिज हुआ है। इन तीनों केसेस के अंदर मेरा अपना असर कम है, पीछे से कोई चीज है जिसका असर बहुत ज्यादा है। इसकी निशानी है, इसकी निशानी ये कि बहुत सारे लोग मेरी एज में मेरे टाइम में हो गए थे लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, वापस सके कंटिन्यू किया है लेकिन आउटपुट को नहीं दे सके जो मिसाल के तौर पर 5-10% ने नहीं पाया और कुछ लोगों ने इससे कहीं बेहतर आउटपुट दे दिया होगा। बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है, अब यहां मुझे एक और चीज सोचनी पड़ती है, वो जो मैं खुद फिक्र करके फैसले करूंगा, चलो मैं उसे कंट्रोल करूंगा, बाकी क्या होगा, बाकी को मैं कैसे कंट्रोल करूं और बाकी को किसके सहारे छोड़ दूं। अब यहां पर मुझे एक और बात समझ में आती है, बस मेरे सामने दो क्वेश्चन है, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, किसकी हद तक तासीर मेरी है, कुछ चीजों में तासीर कहीं और पर है, मैं इसको तीन हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक मेरी आदत है जो अगर गलत सोच गई तो मामला खराब हो गया, एक मेरी आदतें हैं जो अगर गलत हुई तो मामला खराब हो जाएगा, और तीसरा मेरा खुदा से ताल्लुक है, अगर वो खराब हुआ तो मामला खराब हो जाएगा। तीनों को थोड़ा थोड़ा सा आपके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दुरूद भेजा मोहम्मद वालों
पानी है।
आपने दिन भर इस पानी को ठुकराया है नहीं ठुकराया है?
पानी को ठुकराया
किसकी खातिर है? खुदा की खातिर है। अच्छा क्या यूज किया आपने?
पानी की नहीं लज्जत, पानी पीने का मजा।
आपने पानी पीने का मजा छोड़ दिया, किसकी खातिर छोड़ा है? खुदा की खातिर छोड़ा है। अगर इसमें सच्चे हुए तो आप खुदा ने काम करना है।
वो क्या?
जो पानी की नहीं लज्जत है ये उसने दिलानी है, बल्कि इससे बढ़कर लज्जत दिलानी। क्यों? क्योंकि आपने खुदा की खातिर इसको छोड़ा था, और खुदा आपके एहसान को अपनी गर्दन पे नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। छोटी सी बात में आपकी खिदमत में अर्ज करूं,
वो एक साहब ने सुना रहे थे, माशाल्लाह एक शहर के अंदर काफी बड़े बड़ा बिजनेस है, उनका टेक्सटाइल वाला था। कह रहे कि मैं उधर एक जगह कंप्यूटर कुछ चीज खरीदने के लिए, उस जमाने में फॉर्मेलिटीज आ गई थी, सभी रहती हैं तो नहीं रहती नमाज़ ज़ियारत होती थी, मतलब वापस आते थे सवारी पर, इसको मैंने इंसान है तो किसी ने कहा कि वो आदमी जो नमाज पढ़ता था तो सही कह रहे थे अपना काम होगा वो भी नमाज पढ़ता होगा ये छोटी को नमाज नहीं पढ़ता होगा लेकिन हम तो जानवर संभालना उसकी ड्यूटी है संभाल लेते हो पर एक आदमी निशापुर का शिया था निशापुर जमाने में हब था ट्रेड का बिजनेस का ईरान का निशापुर अगर आजकल इतना बड़ा शहर नहीं है तो उस जमाने में बहुत बड़ा शहर निशापुर को फिर बाद में हलाकू खान की फौज ने तबाह कर दिया था बिल्कुल फ्लैट कर दिया था पहले दिन बंदे मारे दूसरे दिन जानवर मारे तीसरे दिन बिल्डिंग जला बिल्कुल फ्लैट चौथे दिन हल चला दिया मामले खत्म फिर भी निशापुर दोबारा बन गया वो निशापुर से आया था निशापुर से इमाम के पास है उसने कहा कि आदमी जानवर पकड़ता है इमाम का इज्जतमंद था उस आदमी के पास है नौकर के पास ये आदमी निशापुर का ताजिर था उसके बड़े बिजनेस वाला था इसके पास है गुलाम के पास कहने लगा ये काम करो तुम्हारा फैशन स्टेटस क्या है उस जमाने में पैसे बहुत करते थे कहते थे आजाद या गुलाम मैंने आपको आसान नहीं दिया सोशल स्टेटस क्या है आजाद या गुलाम उसने कहा गुलाम कहने लगा आजाद चाहिए अच्छा आप गुलाम को जिससे पढ़ने की क्या चाहिए आजाद चाहिए आजाद उसने कहा चाहिए
बस वो बात
दुनिया,
ए खुदा तू हमें दे दुनिया में दे।
गुरु तो हमसे कहते रहते ना काफिरों को खुदा माल क्यों देता है, गुनहगारों को खुदा माल क्यों देता है, खुदा खुद कुरान में कह रहा है कुछ तो तुमसे कहते हैं दुनिया में दे, मैं उनको पूरा पूरा दे देता हूं। फिर आखिरत में कोई खिलाफ नहीं रहता, कोई नसीब नहीं रहता, क्या फिर आखिरत में नसीब नहीं होगा। इससे सिर्फ दुनिया में आएगी जो मांग लेगी, सिर्फ दुनिया में आएगी दुनिया देगी, खत्म हो गया मामला, चक्कर क्लोज हो गया, आखिरत खा लिया जाएगा। उसके बाद हमारे कहा कुछ लोग मुझसे कहते हैं अरे खुदाया हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी नेकी दे, हमारे लिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। दूर में तो मांगो, दुनिया में भी मांगो, आखिरत में भी मांगो, और दुनिया में हर कचरा मत मांगो, नेकी मांगो, अच्छा मांगो, हसना अच्छाई दे, खुदा कचरा क्यों देने, गंदा पैसा ना दे, अच्छा पैसा दे। मैं इसको जुमले में अपने लिए कहता हूं, कमाई ना दे रिस्क दे, कमाई ना दे रिस्क दे, कमाई तो हर एक के पास आती है, पैसे क्या है, पैसे से कहां खोल के कमाया जा सकता है, कमाई ना दे रिस्क दे, रिस्क काफी ज्यादा रिस्क वो मिले जो जिंदगी को चार चीजें नहीं मिले, ये उसूल हो गया। बस वैल्यू कहां से सही कर सकते हैं, वैल्यू कहां से सही करें, ये इंटेलेक्चुअल ऐसे कहा मैंने कि इस कानून को कहा, इस कानून को कहा, जब दुनिया और आखिरत टकराए किसको तरजीह दें, आखिरत को तरजीह दें, फायदा क्या होगा, दुनिया भी लेगी आखिरत भी लेगी। अच्छा अगर किसी ने उल्टा किया तो क्या होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में आता है कुछ कुछ, जिस चीज की खातिर खुदा का हुक्म छोड़ा है उससे जिल्लत मिलेगी, वहां से जिल्लत आएगी, जिल्लत किसे कहते हैं, डिस्ग्रेस, बेइज्जती हो जाएगी। मसलन इस पानी की खातिर अगर खुदा का हुक्म तोड़ दिया तो क्या होगा, अब ये पानी मुझे जिंदगी करवाएगा, दुनिया ने इसकी खातिर खुदा का हुक्म तोड़ा। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, कुछ लोग कहते हैं हम गुनाह अपने लिए नहीं करते औलाद के लिए करते हैं, अगर औलाद से क्या मिलने वाली है, क्यों, इसकी खातिर खुदा का हुक्म टूटा है, एक घर की खातिर खुदा का हुक्म टूटा है, अब क्या मिलेगा, उस घर में सुकून नहीं मिलना है, उस घर से जिंदगी मिलनी है, जिस चीज की खातिर खुदा का हुक्म तोड़ दिया वहां से वो नहीं मिलेगा, जिसकी खातिर टूटा है बेइज्जती मिलेगी। अब मैं एक और मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोग फजर की नमाज नींद की खातिर नहीं पढ़ते, नींद की खातिर हमें नींद चाहिए इसलिए हम नहीं पढ़ते, किसके मुकाबले में हमको खुदा टूटा है, नींद के मुकाबले में, अब इसे नींद मिलेगी नहीं, उसको नींद से बेइज्जती मिलेगी। आपको नींद से क्या लेना था, सुकून लेना था ना, आपको नींद से और क्या चाहिए था, सुकून चाहिए था। अगर कोई इंसान परमानेंट नींद में चला जाए तो वो कौन सी वो को भी बात है कि परमानेंट नींद में चले गया, मतलब आपको कौन में चले गए एक्चुअली, तो नींद तो नहीं चाहिए ना, नींद से सुकून चाहिए, फ्रेश हो जाए इंसान, अगर इस नींद की खातिर खुदा का हुक्म तोड़ते जाएंगे ये नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी भागना पड़ेगा, सारी जिंदगी भागते रहेंगे, सुकून नहीं मिलेगा। और जितनी चीजों को सुकून के लिए जमा करेंगे सिर्फ बेइज्जती होती रहेगी, ये ये दुनिया खुदा ने बनाई है, हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे, कोई ना कोशिश कर ले इसके निजाम को नहीं तोड़ सकेंगे हम, क्योंकि खुदा तो बनाया हुआ है, हम भी खुदा के, दुनिया भी खुदा के, कानून उसका बनाया हुआ है, कोई कहां ना जाएगा इसको तोड़ तो कर सकता है, बस आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तीन काम सही करना है, सही फैसले करना है, सही आदतें बनाना है, सही रास्ता करना है, खुदा से सही फैसले करने के लिए क्या करें, अपनी वैल्यूज को सही करने, वैल्यूज में प्राइम वैल्यू कौन सी चीजों पर काम करें, वो अपना खुदा ना तोड़े, बाकी जो करना है करें, खुदा का हुक्म ना तोड़े। जब मैं अपने बच्चों को फजर की उठाने लगता हूँ तो फजर की वक्त से थोड़ी सी देर पहले उठाने जाता हूँ, 10-15 मिनट पहले, और उसके बाद देखो تمہیں کوئی زندگی ملے گی، میں باپ ہونے کے لانے قبول نہیں کرتا کہ میرے اللہ کو زندگی ملے، تم کو جلاؤں گا، کچھ بھی کر جاؤں گا، کیونکہ آپ خدا پڑھنے والے ہو، میں خدا نہیں پڑھنے دوں گا، کیونکہ مجھے سلام پتا ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں کو بیزار نہیں دے دوں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں کو غلط نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی کرو میں خدا نہ کرو میرے سامنے، میں ریشن دوں گا، کیونکہ مجھے مجھ سے سلام پتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے کہتا ہوں کرنے دو، یہ نہ کرو تو سنو خدا نہ کرو، باقی سب صحیح ہے،
ساٹھ کی قریب سے لے کر ستر تک چلتی ہے، یہ ویلیو بن جاتی ہے. کیا کیا ویلیو بنتی ہے؟ میرے سچے جاننے والے کتنے ہیں؟ میرے سچے جاننے والے کتنے ہیں؟ سچے جاننے والے سے میرا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میں بھی بول رہا ہوں نا, تو یہ ہوتا ہے جو ایڈر ہوتا ہے اس کی کون جاننے والے بن جاتے ہیں. صحیح, سچے جاننے والے کون سے ہیں؟ اگر میری زبان کٹ گئی تو کون مجھے چاہے گا؟ وہ میرا سچا جاننے والا. کیوں؟ میرا اصل عمر ختم ہو گیا بھائی. میں اگر ریسلر ہوں اور بڑا ہو گیا ہوں, ختم ہو گیا نا, اب کون جاننے والا؟ صحیح. اب وہ تمام چیزیں جو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مربوط ہے کبھی نہ کبھی ختم ہوں گی. پیسہ ہے ختم ہو گیا, اب میرے کو چاہنے والا وہ سچا جاننے والا ہے. میں آپ سے کہوں گا اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ایسے رکھیے گا جو آپ کی کامیابی میں نہیں, آپ کی شرمندگی میں آپ کے ساتھ کھڑے. کامیابی میں سب کھڑے ہوتے ہیں سر, آپ کھینچے کھینچے کون نہیں چاہتا میرے ساتھ کھڑا ہو. لیکن جس دن آپ کی کرنل ہونے کا نام کھینچے کھینچ رہی ہو, وہ اس دن کتنے لوگوں سے کھڑے ہوں گے؟ جتنا بھی بات پکچر اتنے سب پڑھ لیں گے. مطلب بتا دیں گے جب بھی کہیں تصویر کھینچ ہوتی ہے تو کچھ لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی کبھی کہ میں زیادہ تر سنبھال کے دے رہا کبھی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ گے. ایک بہت آسان کا دور ہوتا ہے. ہوتا ہے بھائی, جب میری زبان کٹ جائے پھر کون ختم ہو گیا نا؟ اب تو خراب نہیں ہوئی, اب تو تکلیف نہیں ہوئی, اب کون چاہنے والا ہے؟ اب اپنی زندگی میں اب اپنے سچے چاہنے والوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا. اور مصیبت یہ کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم انہیں ہرا چکے ہوتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی مصیبت, ہم اپنی طاقت کے زمانے میں اپنے سچے چاہنے والوں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن واپس آنے کی کوئی مہلت نہیں. آپ اپنے سچے چاہنے والوں کو دور نہ چھوڑیں, ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں, یہ بڑا مہنگا ہوتی ہے. اچھا, یہ جو سچے چاہنے والے ہوتے ہیں یہ کیوں ساتھ رہتے ہیں اور کیوں ساتھ چھوڑتے ہیں؟ ہماری عادتوں کی وجہ سے. بس سب بڑا سارے مجھے چیخ نہیں کیا کرتے ہیں, میرے کچھ سچے چاہنے والے اس وجہ سے مجھ سے دور بھاگ رہیں گے کہ مجھے چیخ نہیں کیا کرتے. اور ان چاہنے والوں کو کبھی میں اتنا ضرورت مند ہوں گا کہ اگر ایک ایک کو لانے کے لیے 10 کروڑ روپے کی دینے پڑے تو میں لینے کو تیار ہوں گا, لیکن وہ نہیں ہے. اور میں نے جو دور بھیج دیے وہ کیوں دور بھیج دیتے؟ فیصلہ کر دور بھیج دیتے؟ نہیں, عادت کی وجہ سے وہ دور چلے گئے. میری کس عادت کی وجہ سے؟ اس کو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے. میں اپنی زندگی کے بعض ایسٹس کبھی جمع کرتا ہوں اور کبھی پھینک دیتا ہوں صرف عادتوں کی وجہ سے, صرف عادتوں کی وجہ سے. میں نے زندگی میں بعض انتہائی نزدیکی دوست اپنی بعض احمقانہ عادتوں کی وجہ سے کھوئے ہیں, چاہے وہ ایک ہی صحیح, لیکن مجھے اس کا ہمیشہ افسوس ہے میں نے کیوں کھویا. اور یہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے چند لوگ آپ کو چند سالوں میں ایک عادت ملتا ہے. آپ نے کھو رہا ہے بہت بڑا مشکل ہے, دوبارہ نہیں کھوئیں. اور مصیبت کیا ہے, کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ صرف عادتوں کی وجہ سے آتے ہیں, عادتوں کی وجہ سے چلے جاتے ہیں, ان میں ہم فیصلے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, ان عادتوں میں ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا, عادت کے اندر سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے جس پہ کنٹرول نہیں ہوتا.
آپ کے برزخ میں آپ کا मतलब कमरे में साथ कौन रहेगा, घर में साथ कौन रहेगा, सब आपके आदतों से बने, खाना क्या खाएंगे सब कुछ आदतों से बने, बर्तन सारी की सारी आदतों से बनती है। इसकी बहुत कमी भी देते हैं कि हमें प्यार नहीं किया जा सके, पर पहली चीज थी आपके अफकार, वो फैसला करवाते हैं उनको सही करने के लिए। वैल्यूज सही करो, वैल्यूज को सही करने के लिए क्या करें, खुदा और दुनिया, आखिरत और दुनिया हमेशा खुदा ऊपर रखिए, आपकी वैल्यू सही हो जाएंगी, वैल्यू सही हो जाएंगी, आपके कुछ डिसीजन सही हो जाएंगे। दूसरा जो डिसीजन को चेंज करता है वो क्या चेंज करता है, आदत है, आदतों से करो। माह रमजान बहुत अच्छा है आदतें सही करने के लिए, और मैं आपकी खिदमत में से ये जुमला सुना और अर्ज करता चलूं, अल्लाह ताला मेरी मेहनत के दूसरे भी बोल दूंगा शायद, लेकिन मैं ये कह रहा था, अगर आप एक साल मेहनत करके एक गलत आदत सही कर ले, आपने कमाल किया है। और अगर आप 10 साल मेहनत करके 10 गलत आदतें सही कर ले, आपको गोल्ड मेडल तो खत्म नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा कमाल किया। क्यों मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने बात लोगों को सारी जिंदगी अपनी गलत आदतों पर मार खाते देखा है और सही नहीं कर सके। आदत सही करना बहुत मुश्किल काम, दुनिया के सख्त तरीन कामों से काम गलत आदत को सही में तब्दील करना, और इसके ऊपर पीएचडी होनी चाहिए, होती है इस तरफ, हम लोग इससे ज्यादा आगाह नहीं है। ये बहुत बड़ा एक फन है, गलत आदतें सही कैसे हो, पर आपके कुछ डिसीजंस आपकी वैल्यूज से मुतासर होते हैं, कुछ डिसीजंस आपके आदतों से मुतासर होते हैं, आदतों से लेकर। अच्छा इसमें फिर एक ऐड करूं मैं, इस वजह से मैं चाहता हूं इस बात को और अच्छी तरह पिक कर लें इसे, जैसे और आप डिसीजन लो हमारा अपने अगर अपनी चंद आदतों से लेकर, सबसे बुरी आदत कौन सी होती है, सबसे बुरी आदत कौन सी, सबसे बुरी आदत वो आपकी है जिसको मेरे चाहने वाले कहें कि ये ना हो तो बेहतर है। हमारी जिंदगी में खुदा ने हमें चंद चाहने वाले बाय डिफॉल्ट दे दिए होते, अगर मेरी किसी आदत से मेरे माँ बाप चिढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि वो आदत है जिसको मुझे सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। क्यों, इससे मेरे चाहने वाले चल रहे हैं और चाहने वालों से बढ़कर कोई ऐसे नहीं होगा। लाइफ का एक हिस्सा होता है जब हमें बात बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगती है, शुरू में समझ में नहीं आती। आप फौरन देखिए आपकी जिंदगी में चाहने वाले कौन कौन से हैं, मसलन ऐन मुमकिन है, मैंने माँ बाप की मिसाल दी, बहुत अच्छा हो कि आपकी जिंदगी में आपके अच्छे चाहने वालों में आपकी आपकी वाइफ हो, या मिसाल के तौर पर वाइफ के लिए उसके शौहर हो, उसको पता हो कि हाँ ये मेरा वो सही चाहने वाला बंदा है, देखिए वो किससे चल रहा है या वो किससे चल रही है, उसे छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि उसका एसेट है, अपनी इस एसेट को लूज कर रहा है किस वजह से, एक गलत आदत की वजह से। इसी तरह आपके पास दोस्तों में कुछ दोस्त होते हैं जो आपके चाहने वाले लोग होते हैं, सच्चे चाहने वाले लोग होते हैं, उनको इससे कोई गलत नहीं कि आपके पास पैसा है या नहीं, शोहरत है या नहीं, ताकत है या नहीं, आपके पास इल्म भी है या नहीं, उनको कोई गलत नहीं, बस वो आपको चाहते हैं। देखिए किससे चल रहे हैं, जिस चीज से वो चल रहे हैं कोशिश करें वो आपके अंदर ना, फिर आखिर में कुछ चीजें होंगी आपकी आदतें होंगी जिससे आप खुद भी चल रहे होंगे, आपको भी समझ में आ गया होगा कि भाई ये मेरी गलत आदत है, लेकिन आप भी नहीं छोड़ पा रहे, उनको भी छोड़ो। अगर आपकी गलत आदतें नहीं छोड़ी, ये बरसात में सारी जमा हो गई और बरसात में जल जल भी छोड़ेंगी, बस किसी को तंग करने की आदत हो जाती है। बदतरीन आदतों में से एक आदत वो होती है जो दूसरे को परेशान करे, तंग करना, गुस्सा करना बहुत बुरी आदत है, इन कैसे बुरी आदतों में से एक आदत गुस्सा करना। अलग तरीके जब हम लोग कह रहे होते थे आप यहाँ बैठने वाला जो सभी आदतों से फायदा हो चुका हो, नहीं होगी किसी अंदर व्यक्ति, ये कोई फरिश्ता आसमान से उतरी उतर है, ये वही होता है जो पब्लिक के अंदर होता है, आठ दस साल से कुछ और पड़ा होता है, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। सबको मेहनत करनी पड़ती है, बस आदतें चेंज करें अपना अंदर के लिए। मेरा ख्याल है इसका पहला स्टेज जो होता है किसी इंसान को ये समझ में आता है कि खराब आदतें कौन कौन सी हैं। बहुत सारे लोग
कौन
کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا, کانٹینٹس کے اعتبار سے وہ شاعر اچھا نہیں تھا, لیکن مولانا کہا شاعری ہی بات کرتے ہو عمر القیس, یہ شاعر اچھا اچھا. ایک دفعہ ہوتا ہے شاعری تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا رسول نے کیا سنن رکھی بات ہے, اللہ کا رسول کے سامنے حالت ہوتا ہے ایک بیٹی ہے قیم, اللہ کا رسول نے کہا مسلمانوں اس کنیز کے بارے میں جو قیم کے کہہ دیا انہوں نے اس کے بارے میں اختیار مجھے دے دو, میں جو فیصلہ کروں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صاحب اختیار ہے
جو دنیا میں رول کر رہے ہیں اس کو,
ये जितने बड़े बड़े नाम आपके ध्यान में शायद आ रहे हो, मसलन अगर यहाँ तो वाइफ एंट्री के सिंगर टाइप के हो, जो एक मामले में बड़ों बड़ों के हाल पीछे से भाग निकलेंगे, बड़े चैंपियन रहेंगे, बहुत बड़े बड़े चैंपियन हैं एंट्री के सिंगर टाइप के इंसानों को आप आसान न समझिएगा। अगर मसलन वो जो उम्र अमर नास था, अमर नास जिसने बड़े बड़े ड्रामे किए थे और ये किया, अगर अमर न्यास आज की दुनिया में जिंदा हो तो हिंदी के सिंदर किस किस्म का आदमी है, इस कैलिबर का आदमी है, लोग बहुत अजीब लोग हैं। ये सारे सोशल साइंस से लिखे हैं, ये सब वहां से आते हैं उनको लेने के बाद मैं अपने कहा और वहां से अगर मैं वापस आता हूँ, आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने अफकार को सही करें, अफकार वैल्यूज चाहते हैं, प्राइम वैल्यू ये खुदा को तरजीह दें, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपनी आदतों को सही करें, अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतों को तर्क कर दें, आपका फ्यूचर सिक्योर होना शुरू हो जाएगा, आपकी अच्छे लोगों से दोस्तियां बनाना शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर अच्छी आदतें आने लगेंगी। मैंने कहा कि अच्छी आदतों से बहुत अच्छी आदत यह है कि अच्छी आदत की तारीफ करो, उससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, दिल को मुस्किन कर जाता है। आपने देखा होगा एक दुआ है, ربنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غنا للذين آمنوا، اے خدایا جو لوگ ایمان لائے ان کا کینہ گوز میرے دل میں قرار نہ دے۔ ہے یہ دعا، میں پہلے ایک زمانے میں ایک آدمی سے بہت چڑھتا تھا، بہت چڑھتا تھا، میں اس کی شکل دیکھ کے مجھے چڑھان ہونے لگی تھی۔ اب میں نے کہا اپنے آپ سے کہ بھائی بالآخر ہے بھی امیر مومنین کا آنے والا، اور میں اگر اس کی گوز اور کینا لے کر قبر میں اتر گیا تو یہ جو گوز اور کینا ہے یہ مجھے برزخ میں یا تو سانپ دلوائے گا یا بچھو دلوائے گا، یہ بڑی مصیبت نہیں ہے میرے لیے، اور یہ قبر میں ٹھیک ٹھاک مجھے پریشان کرے گا، اب اس میں سولو کیسے ہو؟ تو میں نے سولو ایسے کیا کہ وہ جیسے مجھے نظر آتا تھا میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتا کہ اے خدا میرے دل میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے گوز اور کینا خراب نہ ہو، کچھ سجدوں میں معاملہ حل، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے میرے دل میں وہ ذوق نہ قرار نہ دے۔ ابھی بھی اگر کسی کے ساتھ میرے کو ایسی مشکل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں احساس ہوتا ہے فرسٹریشن انتہائی زیادہ آ جاتی ہے، تو میں یہ کرتا ہوں جیسے ہی وہ نظر آتا ہے میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تاکہ میں کیوں نہیں زیادہ وجہ کسی کا وہ ذوق نہ لگے کہ چار دنیا اتنے کی دنیا کے خاطر میں ٹینشن ہوں، یہ مشکل کا حال ہے۔ سبحان اللہ، یہ دو بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ مجھے تیسرا معاملہ یہ اپنا خدا سے تعلق سے کرو، جنہوں کو اردو سمجھتے ہیں
بندوں
से डर के गुनाह नहीं करता और मेरे होते गुनाह कर लेता भाई, मैं आपके सामने गुनाह नहीं कर रहा, क्यों मुझे डर है कि आप मेरा क्या करेंगे? खुदा से डरता है, फिर खुदा हिस्सा डर देता अकेले तो गुनाह न कर एक बार। दूसरी बात ये कि खुदा के हुक्म की कम अज कम तहकीर ना कर, इंसल्ट ना कर। भले तुम नमाज नहीं पढ़ते ना, तुमने गुनाह किया है, ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है, अब खड़े होकर नमाज आज की भी नहीं है, अब ये इंसल्ट ना करो। इंसल्ट करोगे खुदा जलील करेगा, खुदा को हुक्म की इंसल्ट नहीं करो। साफ वाला बता रहा नमाज तो रुको, कोई बुरा लगे तो माफ माफ भी जाता है, दिल गाड़ी नहीं रखती ना, वो नहीं है खत्म, एक गुनाह हो गया नहीं ना को और पास से सामने गाड़ी है नहीं, जो रखता है वो है जो आपको खुदा के इताअत करनी करें, खुदा ने नाउज़ुबिल्लाह अगर आपने कोई गुनाह कर दिया है आप खुदा को हुक्म के लिए सर नहीं होगा, खुदा को हुक्म के सर करोगे तो क्या होगा? खुदा गुस्सा करेगा, गुनाह भी करता है और बुरा भी करता है, और खाता नहीं हमें ये दुनिया में हमें रहता है, इस दुनिया में उसकी रजा कर दे। अब और लोग तो कम अज कम काम क्या करें, दूसरी बात ये कि अगर नाफरमानी कर ही रहे हो कम से कम खुदा को भी इज्जत नहीं हो। हमारे पास मौजूद है नौजुला था एक आदमी ने किसी औरत को मजबूर किया गलत काम के ऊपर, तो जैसे मजबूर होने लगी तो कहते हैं कि वो किसी बुतों की मान रहे थे, बुतों की वजह से हिंदू टाइप के लोग होते हैं उस जमाने में, हिंदू सारे नहीं थे, बुतों को मानते थे, हिंदुओं में बुत परस्त में फर्क होता है, हिंदुओं को बुत परस्त कहते हैं, बहुत परस बहुत फर्क होता है, बहुत परस हिंदू बहुत फर्क है, खैर वो दोनों मन में रही थी, तो वो जब उसके साथ गलत काम करने लगा तो उसके लिए एक मिनट रुक जाओ, इस बुद्ध के ऊपर एक कपड़ा डाल दो, उसने कहा क्यों, कहने की कि मैं गलत करूं इसकी इंसल्ट ना करो। तो इस आदमी ने कहा कि ये खुदा को नहीं मानती है, बुद्ध को मानती है और इस बुद्ध से शर्मिंदा है और मैं खुदा को मानता हूं, अगर खुदा की बेहतरानी शुरू कर दी तो बहुत बड़ा मसलन कोई कुरान करीम नहीं पढ़ता, चलो ठीक है मैंने गलत किया, कुरान करीम किताब पढ़ने की जान से नहीं थी, सजाने की जान से नहीं थी, लेकिन आपको ये क्या, मैंने कुरान नहीं पढ़ता मसलन नाउज अल्लाह को बेहतरान नहीं किया, कौन से बेहतरान मत करो, एहराम करो को मसलन, इससे खुदा से ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, आप बेहतरान नहीं, खुदा के एहराम को दिल में रखो,
तो
जनाब ने उसको दे दोगे, वो अपने शहर वापस आ रहा था दरवाजा बंद करके। अजाब उसने कहा कि सीधे दरबार में मेरे सारे जाने वाले हैं, मैं फोन लगवा लूंगा उनको बताऊं मैं जिस पढ़ने गया था अपने काम छोड़ के। तो उसने कहा कि भाई दरवाजा खोलो। उसने कहा पीछे एक बंदा खड़ा है जो बुराई शराबी है, इलाके का बदमाश। उसने शराब के नशे में पूछा कि तू कौन है? बताया कि मैं जिस पढ़ने गया था। उसने कहा मैं नहीं खोलता। अब उसने बड़ी इंतजार की भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने क्या गलती की है। उसने वो ऐसी नशे में पागल हुआ, उसने दरवाजा खोला और उसको कहा कि तुम गलत किया था, तुमने गिर किया और तुमने खूब उसको गाया जाने में। उसने भी सोचा कि भाई नशे में मैं क्या इससे लड़ूँ, फिर ये तो बहुत चाकू चाकू मारने वाला आदमी, चाकू का शहर थे उस जमाने में, चाकू मार के पेट फाड़ देगा ना, मैं इससे कहाँ लड़ूंगा। तो उस सुन रहा तो उसने कहा कि अच्छा मैं जाऊँ, कहना नहीं जाने से पहले मेरे लिए मंजिल छोड़ो। मैं इंसानों की मंजिल छोड़ूंगी नशे में बैठा हुआ जैसे कि क्या नहीं मंजिल छोड़ूंगी। तो उससे कहा कि भाई ऐसा है
Gracias.
کرنا مطلوب. اتنا بہتر ہوگئے خدا مانتا سنبھال لے گا. اور خدا نے پھر نام صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامی شروع کر دی پھر کچھ نہیں بچے گا. اس لیے وہ شروع ہے بہت وقتی آپ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ خدا مزید کرتے ہیں خدا ان کا سوا کرتے ہیں اللہ کے ذہن میں ہمیں کہا ہم چند دن بھول جائیں گے پھر چند دن کر لیں گے آج ان شاء اللہ یاد آ گیا ہے اللہ کا شکر یاد آ گیا ہے ہم پھر کوئی کام کرتے ہیں دس دفعہ پڑھ کر آدم کو پکارتے ہیں اپنے شرکات میں خدا ان کا دس دفعہ پکارا تھا آپ یاد ہے اسی طرح خدا ان کا کہ نام کو پکار کے روز سوا کرتے ہیں جس میں اعظم اعظم اجل الاکرم یا اللہ
بجاه محمد وآل محمد.